ओम शांति।
महात्मा बुद्ध के जीवन काल में एक राजकुमार उनके पास दीक्षित हुआ और महात्मा बुद्ध ने उस युवा सन्यासी को भिक्षा मांगने के लिए किसी गांव में भेजा। वो युवा सन्यासी दीक्षा लेकर वापस आया और उसने कहा कि इसके बाद मैं भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, ऐसा क्या हुआ? तो उस युवा सन्यासी ने कहा कि जब मैं जा रहा था भिक्षा मांगने तो सोच रहा था राजभवन में जो मुझे अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ खाने की चीजें मिलती थी, कितने दिनों से मैंने वो सब नहीं खाया है। कितना अच्छा होता यदि किसी द्वार पर वो मुझे सारी चीजें मिल जाती। वो एक घर के सामने खड़ा होता है और एक स्त्री दरवाजा खोलती है। वो श्राविका उनसे कहती है कि आप आए तो कुछ भोजन करके जाए, और वो सारी वो चीजें लेके आती है जो उसने सोची थी और जो उसकी पसंद की थी। उसे आश्चर्य होता है, परंतु वो सोचता है शायद संयोग होगा। वो उन भोजन की वस्तुओं को स्वीकार करता है। वो कहती है यहीं बैठकर आप खाइए, तो वो खाता है और खाते खाते विचार करता है और अपने उन दिनों को याद करता है, राजसी दिनों को, जब भोजन के बाद बहुत अच्छे से वो विश्राम करता था। सोचता है यदि आज भी भोजन के बाद थोड़ा विश्राम करने मिल जाए तो कितना अच्छा होता। और उतने में ही वो स्त्री, वो युवा स्त्री उस सन्यासी से कहते हैं कि आपका बड़ा अनुग्रह होगा यदि आप थोड़े देर यहीं पर विश्राम कर ले, मेरा ये घर थोड़ा पवित्र हो जाएगा। उसे फिर लगता है इसे कैसे पता चला, फिर भी सोचता है शायद संयोग है, और वो विश्राम करने लगता है। और विश्राम करते करते अचानक मन में विचार आता है, कहाँ वो मेरा राजमहल और अब का ये सन्यासी जीवन। इसमें ना तो मेरा घर है, ना तो कोई साया है, ना कोई सहारा है, ना कोई बिस्तर है। और मन में वो सन्यासी सोच ही रहा होता है कि वो श्राविका, वो स्त्री कह देती है, हे योगी, हे भंते, इस संसार में ना तुम्हारा कोई है, ना मेरा कोई है, ना किसी का कोई घर है, ना किसी का कोई साया, ना ही कोई बिस्तर। तब उसे एकदम से पता चलता है और वो उस स्त्री से कहता है, क्या तुम मेरी सारी विचारधाराओं को जानती हो? वो स्त्री कहती है, मैंने अपने मन को ऐसा शांत कर लिया है, ऐसा विचार शून्य कर लिया है कि सामने जो व्यक्ति आता है उसके विचारों को मैं पढ़ लेती हूं। और वो सन्यासी तुरंत वहां से निकलकर चला जाता है। महात्मा बुद्ध को अपनी ये कहानी वो सुना रहा है और फिर कहता है कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। परंतु बुद्ध कहते हैं, आखिर क्यों, ऐसा क्या हो गया कि तुम वापस नहीं जाओगे? वो कहता है, जब मैंने उस स्त्री को देखा था तो मेरे मन में विकार के संकल्प उत्पन्न हुए थे, और जैसे ही उसने कहा था कि मेरे हर विचार को वो जान जाती है, मैं आत्मग्लानी से पीड़ित हो गया। अब किस मुंह से मैं उसके द्वार पर फिर जाऊं? वासना ने मेरे मन को, मेरे चित्त को पकड़ लिया और मेरे ये संकल्प भी शायद वह श्राविका, वह स्त्री जान गई होगी, इसलिए मैं पुनः उसके द्वार पर नहीं जाना चाहता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, फिर तो तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि पहली बार जब तुम गए थे तो बेहोश थे, पहली बार जब तुम गए थे तब मूर्छित थे, अब जाओ, पर इस बार जब जाओ तो जागृत, इस बार जब जाओ तो जाग कर जाना, एक भी विचार जो तुम्हारे मन में चले, एक भी संकल्प जो तुम्हारे मन में आए वो अनदेखा न हो, एक एक संकल्प को देखना, एक एक संकल्प को साक्षी स्थिति में स्थित होकर देखना, जाओ फिर जाओ। तो वो युवा सन्यासी फिर जाता है और जाते जाते अपने मन को देखते हुए जाता है, जाते जाते उसी जागृत अवस्था में जाता है, जाते जाते एक एक विचार पर उसकी नजर है, क्योंकि जिसके पास वो जा रहा है वह स्त्री उसके संकल्प पढ़ने वाली है। उसके द्वार पर फिर खड़ा होता है, ठक ठक करता है, दरवाजा खुलता है, भोजन के लिए कहता है, वो स्त्री इसे पुकारती, अंदर बुलाती है, वो अंदर जाता है, फिर से भोजन, पहली बार भी गया था अब भी गया, अब भी भोजन कर रहा है, परंतु भोजन करते करते एक एक विचार पर ध्यान है, क्योंकि मेरे विचारों को कोई पढ़ रहा है, मेरे विचारों को कोई देख रहा है, ऐसा भाव उसके अंदर है। भोजन पूरा करता है, स्त्री फिर कहती है, हे भंते आप विश्राम करके जाइए, वो फिर विश्राम करता है, परंतु इस बार विश्राम जब कर रहा है, इस बार जब सो रहा है, तब उसका सारा ध्यान अपनी ओर है, एक दर्शक की तरह अपने आप को देख रहा है और विश्राम करके लौट आता है, और इस बार जब लौटता है तो एक आनंद उसके हृदय में है, जीत का एहसास, एक सूक्ष्म जीत, एक ऐसी जीत जो केवल उसे पता है। वो जीत थी संकल्पों की जीत, वो जीत थी साक्षी की जीत, वो जीत थी साक्षी भाव की जीत, स्वयं स्वयं को देखना, स्वयं स्वयं को जागृत होकर देखना, जहां पर स्वयं ही स्वयं का दृष्टा बन जाना, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड अलग अलग हो गए, स्वयं स्वयं को देखना और अनासक्त भाव से देखना और डिटैच्ड भाव से देखना, ऐसी डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप की जो अवस्था है उसे साक्षी स्थिति कहा जाता है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी सभी ने सुनी, क्या कहा बाबा ने, साक्षी कैसे बने, साक्षी दृष्टा कैसे बने। इस ब्राह्मण जीवन में हमें हमेशा बाबा ने सिखाया है कि जो कुछ हो रहा है उसको साक्षी होकर देखो, और साक्षी स्थिति सर्वोच्च अवस्था है अध्यात्म की, डिटैच्ड ऑब्जर्वर की, संपूर्ण उपराम पर्दा है जिस पर सब चल रहा है, उस पर मैं भी हूं परंतु मैं फिर भी अलग हूं, इस अवस्था को साक्षी अवस्था कहा जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में हमें सात बातों को, चीजों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को कहो, साक्षी होकर देखना है। उसमें से एक बात की चर्चा आज की मुरली में आई है। सबसे पहला स्वयं को साक्षी होकर देखना है, उसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे, जिसकी चर्चा आज बाबा ने मुरली में की। दूसरा है दूसरी आत्माओं को साक्षी होकर देखना। एक है स्वयं को साक्षी होकर देखना, दूसरा है संसार की जो भी आत्माएं हैं सबको साक्षी होकर देखना। खेल चल रहा है, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, वो वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, कूदना नहीं है उसमें, बाहर निकाल कर वो जो कुछ कर रहे हैं उनको देखना, दर्शक बन जाना, स्पेक्टेटर, दर्शक बनकर रंगमंच पर, पर्दे पर, स्क्रीन पर जो खेल हो रहा है वो देखना। सारी परछाई है। कभी बाबा ने मुरली में कहा था साकार में, जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब कुछ स्वप्नव्रत है, जो दिख रहा है शायद वो सत्य नहीं, स्टेज पर दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण क्रोधित है रावण पर, क्रोध से भरा हुआ है रावण के प्रति, युद्ध के लिए तैयार है रावण से, परंतु उसी गांव में हो रही रामलीला में कुछ ही देर के बाद वही लक्ष्मण और वही रावण पर्दे के पीछे बैठकर चाय पी रहे हैं। संसार की सभी आत्माओं को साक्षी होकर देखने का अभ्यास, जो जो वो कर रहे हैं, अभी अभी तारीफ, अभी अभी निंदा, अभी अभी अपमान, अभी अभी कुछ और खेल हो रहा है, परंतु हम इन सबसे उपराम हैं और सबसे अलग और सबसे परे। संसार की कोई भी बात का हम पर प्रभाव नहीं। कुमारियों से कहा है कुमारी अर्थात जो प्रभावित ना हो। दूसरा दूसरी आत्माओं को साक्षी होकर देखना। तीसरा है इस प्रकृति को साक्षी होकर देखना, प्रकृति कैसी थी और अब क्या बन गई। वहां प्रकृति तुम्हारी दासी थी, वहां चैतन्य सेवाधारी थे, वहां प्रकृति तुम्हें पंखा करती थी, यहां तुम्हारे हाथ में रंग बिरंगी पंखे हैं। प्रकृति का कैसा खेल रहा है सत्युग से लेकर अब तक, प्रकृति में क्या हो रहा है, कैसे वो तमोप्रधान बन गई है और किसने उसे तमोप्रधान बनाया है, और फिर प्रकृति का पार्ट कैसे बदलेगा, प्रकृति के पांचों तत्वों में क्या हो रहा है, संपूर्ण प्रकृति को भी साक्षी होकर देखना। तीसरा, चौथा, इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना। इस ड्रामा में जो हो रहा है कैसा है, कैसा है, कल्याणकारी। आज सुबह की मुरली, एक्सीडेंट हो गया उसमें भी कल्याण, ज्यादा नुकसान होने वाला था कम नुकसान हुआ। ब्राह्मणों के लिए अकल्याण कुछ भी नहीं है, अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छिपा हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी बाप इस समय साथ है। संपूर्ण ड्रामा को एक बार साक्षी होकर देखना 24 घंटे में, हो सके तो दो बार। एक्टर्स पार्ट लेकर रहे हैं, किसी का यहां पर कोई दोष नहीं, सभी एक्टर्स संपूर्ण निर्दोष। ड्रामा रिपीट हो रहा है, नथिंग न्यू, रिपीट नथिंग न्यू, यह ड्रामा बाप को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। ढेर सारी पॉइंट्स है ड्रामा की, एक बार इस ड्रामा को भी साक्षी होकर देखना। अगला, माया को भी साक्षी होकर देखना, विकारों ने कैसे प्रवेश किया, कैसा एक समय था जब संपूर्ण निर्विकारिता थी और कब और कहां वो विकार प्रवेश कर गए। अपने ही जीवन को यहां पर साक्षी होकर देखा जा सकता है कि मेरे जीवन में कब कब कौन कौन सा विकार किस किस कारण से कैसे आ गया, छोटा सा था आया तो, और कैसे बड़ा बड़ा होता होते होते अब उसने ऐसा विशाल काय रूप धारण किया है। क्रोध को साक्षी होकर देखना, काम को साक्षी होकर देखना, लोभ को साक्षी होकर, मैं को, अहंकार को, आलस्य को, सब साक्षी होकर विकारों को देखना। अगला है समय, छठवां, समय को साक्षी होकर देखना, कैसे समय बदला है, कैसे समय करवट लेता है, कौन सा समय चल रहा है, पहले कौन सा समय था, उसके पहले कौन सा समय था, समय ने कैसे परिवर्तन किया है। एक समय था यज्ञ के इतिहास में कि हिस्ट्री हॉल में बाबा आते थे, शिव बाबा। एक बार हिस्ट्री हॉल में शिव बाबा आए तो कुछ माताएं थी और कुछ भाई थे। माताओं को लगा भाई बैठे हैं, हम तब तक भोजन करके आते, और माताएं सारी भोजन करने चली गई। भाई भी क्या करे, कब तक बैठे, भगवान सामने बैठा है। थोड़े देर बैठा भाई लोग और उनको लगा चलो हम भी भोजन करके आते हैं, और भाई भी चले गए और बाबा अकेला बैठे है हिस्ट्री हॉल में। कोई तो आए जिसको दृष्टि दू, किसको कुछ दू, एक वो समय था। और फिर समय आया जब बाबा मेडिटेशन हॉल में आने लगे, फिर ग्रुप से मिलने लगे, एक एक ग्रुप को रात रात भर मिलना। दूसरे ग्रुप तब तक जाकर सो जाते थे, फिर सुबह आके मिलते थे, जब हमारा टर्न आएगा। फिर मेडिटेशन हॉल, फिर उसके बाद में ओम शांति भवन, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर डायमंड हॉल में आना चालू हुआ। उसमें पार्टियां मिलती थी, लंबा लंबा समय, छः छः घंटा चलता था, कभी पाँच घंटा, छः घंटा, कभी कभी बहुत पहले अठारह अठारह घंटा तक बाबा रहे हैं। एक एक को दृष्टि, एक एक से बातें, वो पार्ट पूरा हुआ, फिर डायमंड हॉल का पार्ट, फिर छः छः घंटे से चार चार घंटा हुआ, फिर दो दो घंटा हुआ, फिर एक एक घंटा हुआ, फिर दृष्टि, और अभी रिकॉर्डेड पुराना। समय को भी साक्षी होकर देखना। और लास्ट है सातवां, भगवान को साक्षी होकर देखना, जैसे वो सारी सृष्टि को साक्षी होकर देखता है, हम उसको भी साक्षी होकर देखो, देखना है कैसे वो पार्ट प्ले करता है, कैसे वो क्या क्या उसने लीलाएं की। जन्म कर्म च दिव्य च, हे अर्जुन मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य है, अवजानंती माम मुड़ा। जब मैं मनुष्य तन में आता हूं तो मूर्ख मुझे जान नहीं पाते, ऐसा वो परमात्मा, कैसा उसका पाठ है, क्या उसने किया, कैसा वो कर रहा है, उसकी लीलाएं कैसे, उसकी लीलाएं हैं। इन सातों चीजों को, बातों को साक्षी होकर देखना। आज की मुरली में बाबा ने कहा किसको साक्षी होकर देखो, स्वयं को, और स्वयं की भी दो बातें, कौन सी बातें, तन और मन। एक है तन और दूसरा है मन। अपने तन को और अपने मन को भी साक्षी होकर देखो। क्या देखो? तन में बीमारी आएगी, जो सोचा नहीं था ऐसी ऐसी बीमारी आएगी, बीमारी आएगी। तो ये भी नहीं कहो कि ये बीमारी आ गई या मैं अलग हूं और ये बीमारी अलग है, और ये भी नहीं कहो ये कर्म भोग है, कर्मों का हिसाब है। क्या कहो फिर? तुम्हारी अमानत है, तुम जानो। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। जैसा वो रखे, जिस हाल में वो रखे, जहां वो रखे, जो वो खिलाए, जैसा वो खिलाए, ऐसा समर्पण भाव। ये सबसे बड़ी परीक्षा है योगी की। बाकी सभी परीक्षाओं में तो पास हो जाते हैं, परंतु जब शरीर की बीमारी आती है, जब अचानक एक दिन पता चलता है कैंसर है, और एक दिन जब पता चलता है कैंसर है और वो फैल चुका है, तब घबराहट, तब डर, तब इस शरीर को हम पकड़ना चाहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? कितना स्वयं के शरीर से भी उपराम। हमने कई सारी दादियों को देखा है, इधर से आईवी लाइन लो, उधर से आईवी लाइन लो, कुछ नहीं, जैसे शरीर से डिटैच हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई दर्द का अनुभव नहीं। कितना अभ्यास होगा शरीर से अलग रहने का। देह को भी अमानत समझना, तेरा है तू जान। इसी के साथ साथ बाबा ने मुरली की शुरुआत सहनशीलता से की है। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? कौन सी दुनिया देख रहे हैं? पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया का राज्य, पुरानी जड़जड़ीभूत दुनिया देख रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि बच्चों को कितना सहन करना पड़ता है, परंतु सहन करने के बहुत सारे फायदे सुनाए। सहन करो तो क्या बन जाओगे? शक्तिशाली बन जाओगे। सहन करो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाओगे। सहन करो तो तुम्हारे चरित्र बन जाएंगे। तुम्हारा यादगार क्या है? चरित्रों का यादगार क्या है? भागवत, खुशी और नशा। इससे सहन करोगे तो परिवर्तन हो जाएगा दुख। तो शरीर की व्याधियां आएगी। 1995 की एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है, यदि तुम्हारे घर कोई मेहमान आ जाए और तुम उसकी बहुत महिमा करो तो वो खुशी खुशी से विदा होता है, इसी तरह जब तुम्हारे पास कोई बीमारी आ जाए, कोई व्याधि आ जाए, तो क्या कहो? वाह व्याधि वाह। दुखी नहीं हो जाओ, वाय मी, मुझे ही क्यों बीमारी आ जाती है, आ गई अच्छा है, हिसाब चुक्त हो रहा है। वो समय है स्वयं को अशरीर बनाने का, स्थिर रखने का, अचल रहने का, डगमग न होने का, दुखी न होने का, शिकायत से मन को न भरने का। और इस बीमारी से कोई नहीं छूट सकेगा। गीता में कहीं लिखा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। हे अर्जुन, सब कुछ साक्षी होकर देख, जन्म को, मृत्यु को, जरा को और व्याधि को। जन्म में दुख, मृत्यु में दुख, बुढ़ापे में दुख, बीमारी में दुख, परंतु ये खेल जान, इससे कोई छूट नहीं सकता। सब कुछ साक्षी होकर देख। जो जिसने किया है वो उसको मिल रहा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। जिसने जो जो किया था वो ही मिल रहा है। बीमारियां भी जो आ रही है वो भी एक मार्ग है, हिसाब सेटल हो रहा है, कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं। इसलिए जब बीमारी आ जाए, इस तन के भी साक्षी, ये तन उसको दिया है, अब हमारा नहीं, उसको भी सहन करना। एक व्यक्ति कहीं से जा रहा होता है और वहां पर लुहार का एक दुकान होता है, तो वो देखता है खिड़की से झांक कर ठोक रहा होता है हथौड़ी से वो लुहार, नीचे वो जिसको कहते हैं निहाई, जिसके ऊपर ठोका जाता है, और एक कोने पर बहुत सारी हथौड़ियां टुकड़े टुकड़े होकर गिरी होती है। वो व्यक्ति अंदर जाकर पूछता है कि हे भाई मुझे बताओ कि ये इतनी सारी हथौड़ियां टूट गई है तो इनको तोड़ने के लिए कितनी निहाई की आवश्यकता पड़ी होगी। वो कहता है कितनी नहीं, एक ही, क्योंकि हथौड़ी जो है वो सहन नहीं करती, वो चोट करती है, और जो निहाई होती है वो सहन करती है, और जो सहन करता है और जो सहन करने वाली चीज है वो शक्तिशाली हो जाती है। जीवन में जिसने जितना सहन किया वो उतना अधिक शक्तिशाली। तुम्हें सहन करना है, भगवान के महावाक्य है। निंदा तुम्हारी करेंगे, सब कुछ होगा तुम्हारे साथ, संसार के लोग सब करेंगे, परंतु बाप का आदेश है इसलिए तुम्हें सहन करना है। बाइबल में कहीं लिखा है दे शाल परसिक्यूट यू बिकॉज दे हैव परसिक्यूटेड मी, दे विल हर्ल थ्रो स्टोन्स अपॉन यू बिकॉज दे हैव हर्ल थ्रो स्टोन्स अपॉन मी, दे विल अब्यूज यू बिकॉज दे हैव अब्यूज्ड मी, बट वन डे दे विल प्रेज यू। वो तुम्हारे साथ वही करेंगे, तुम्हें सताएंगे क्योंकि उन्होंने मुझे भी सताया, तुम्हारे पर पत्थर फेंकेंगे क्योंकि मुझ पर भी पत्थर फेंके, पर एक दिन तुम्हारी महिमा करेंगे क्योंकि मेरी भी महिमा करने वाले है। जो जो ब्रह्मा ने सहन किया हर एक को इतना तो नहीं, परंतु सहन करना पड़ेगा, और जो टूट जाता है सहन नहीं कर पाता वो शक्तिशाली नहीं। जिसने जीवन के हर गम को झेला है, सहन किया है, वो उतना अधिक शक्तिशाली। एक ट्रक में एक मूर्ति जा रही है और बहुत सारे पत्थर के टुकड़े जो कि टाइल्स के रूप में प्रयोग करने वाले हैं, एक ट्रक में जा रहा है, वो टाइल्स के टुकड़े उस मूर्ति से कहते हैं हम दोनों एक ही पत्थर के हैं, पर देखो तो तुम मंदिर जा रही हो, तुम्हारी पूजा होगी और मैं टाइल्स, लोग मुझ पर चलेंगे, ये अंतर क्यों? तो वो मूर्ति कहती है पत्थर तो हम एक ही थे, परंतु मैंने सहन किया और तुम टूट कर गिर गए, इसलिए अपनी सहनशीलता को बढ़ाना है, संकल्प देना है स्वयं को मैं सहनशील आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, सहनशीलता का अवतार हूं, सहनशीलता की देवी हूं। इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिन्होंने सहन किया, सब कुछ सहा और वही अंत में विजयी हुए। जितने सम्राट संसार में हुए हैं, सम्राट अशोक से लेके तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेके तो पृथ्वीराज चौहान तक, सभी की जीवन गाथा है यदि हम पढ़े तो, बहुत सहन किया है, बहुत संघर्ष किया है, अपनी अपनी संघर्ष की कहानी है। उसके सामने हमने क्या सहन किया, थोड़ा सा हमारा दुख और हम टूट जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया और हम टूट जाते हैं, किसी ने थोड़ा सा अच्छा व्यवहार नहीं किया और हम टूट जाते हैं, और हम सहन नहीं कर पाते, या तो उदास होते हैं या तो क्रोधित होकर बदला लेना चाहते हैं। क्या यही हमारी सहनशीलता है? उस ब्रह्मा ने कितना सहन किया, कितने लोगों ने क्या क्या कहा, ऐसी ऐसी गालियां दी जो कभी सोचा नहीं था, किसी ने सुनी नहीं थी। सिंध ऑब्जर्वर नाम के इंग्लिश पेपर में लिखा था ब्रह्मा जो है ही प्रैक्टिसेस लेचरी एंड सॉर्सरी, लेचरी अर्थात कामांधता, कामुक, सॉर्सरी अर्थात जादू टोना। कितनों ने कहा, भाई बहनों ने, बाबा मान हानि का केस कर दो। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये आज सुबह की अव्यक्त वाणी, बाप को हर बच्चा प्रिय है, बाप को कभी कोई बच्चा अप्रिय होता है क्या? बाप ने तो ठेका ले रखा है सबको राजी करने का। सिक सिक छुक छुक मरमर, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स, कठोर ठोकरों की यूनिवर्सिटी से जो निकलता है डिग्री लेकर, वो शक्तिशाली है। लाइफ इज अ यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स, कठोर ठोकरों की ये विश्वविद्यालय है जीवन, इसमें से निकलना होता है डिग्री लेकर, पास विद ऑनर की। तो बीमारी आएगी, धैर्यता से सहन करना है। बीमारी आएगी खेल समझना है, बीमारी आएगी साक्षी होकर देखना है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में उदाहरण है, जब वो अमेरिका में थे, उनके एक गुरु भाई ने पत्र लिखा और पत्र में कहा कि दूसरा एक गुरु भाई रखाल, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो मेडिटेशन नहीं कर सकता। उन्होंने उत्तर में लिखा, व्हाट ही इज सिक, गेट आउट ऑफ दिस हिप्नोसिस, दिस इल्यूजन, टेल हिम टू मेडिटेट, आई एम सोल, आई एम आत्मन, आई एम आत्मन। ये कैसा भ्रम है कि मैं बीमार हूं इसलिए मैं योग नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता। उसको कहो खड़े होकर बैठे और तपस्या करे कि मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मस्मि। न च भाति भूत संघम, ये जो भूत का संघ है, ये जो असेंबलेज ऑफ बोन्स मसल्स टेंडन्स, ये जो देह है, ये मैं नहीं, मैं वह हूं तद्ब्रह्म निष्कलमहम न च भाति भूत संघम। ये कैसी दुर्बलता है, रात में संकल्प आता है कि आज थोड़ा बुखार लग रहा है और खुद ही संकल्प कर लेते कि कल अमृत वेला नहीं उठेंगे, और अपने आप को यह भी बता देते कि बाबा को भी पता है कि मुझे बुखार है। कोई कहता है बुखार चेक करे तो नहीं करना चेक, लग रहा है, क्योंकि उसमें अगर नहीं आया तो। कई मरीज तो ऐसे ही आते, हमें हमेशा ही बुखार रहता है, कितना रहता है वो उसमें नहीं आता है पर रहता है, उसकी कोई दवाई हो तो देखो। शरीर की व्याधियों को सहन करना बिना कुछ कहे तपस्या, समाधान से दुख को सहन करना भी तपश्चर्या है। शरीर को पीड़ा भी नहीं देना, शरीर को गालियां भी नहीं देना, किसी एक मुरली में बाबा ने कहा था, जो जो हो रहा है उसको साक्षी होकर देखो। संभाल करनी है देह की, परंतु ट्रस्टी समझकर, साक्षी समझकर। उसको भोग विलासिता भी नहीं डुबाना है तो उसको अत्यंत पीड़ा भी नहीं देना है। अति सर्वत्र वर्जते, ना तो इधर ना तो उधर, बीच संभल के रखना है। ये तन बड़े भाग मानुष तन पावा, क्योंकि इसी शरीर में बैठकर हमको तपस्या करनी है। तो एक ध्यान तो ये रखना है कि ऐसा आहार, ऐसा हमारा जीवन शैली हो ताकि इससे शरीर बार बार बीमार ना पड़े, बार बार डॉक्टर शॉपिंग ना करना पड़े। पहली चीज तो ये है। और यदि हाँ शरीर बीमार हो गया तो उसकी प्यार से संभाल करनी है, उसे ठीक रखना है, निग्लेक्ट भी नहीं करना है ताकि वो और बीमार पड़ जाए, ऐसा भी ना हो। और जो आज कहा, सहन करना, शारीरिक व्याधियों को, पीड़ा को सहन करना। सूफी संत कभी हुए थे सरमद, उसकी छाती में घाव हो गए थे और घाव में बहुत सारे कीड़े थे, मैगॉट्स, मेडिकल में मैगॉट्स कहते हैं। वो जब नमाज पढ़ने बैठता था और नीचे झुकता था नमाज के लिए तो वो कीड़े नीचे गिर के मर जाते थे। उसे बहुत दया आई, वो सोचता था कि भगवान तो मेरे ऊपर छत्र छाया के रूप में है, उस खुदा की दुआएं तो मेरे साथ ही है, पर इनको कौन बचाएगा? इसलिए उसने झुकना बंद कर दिया और बाद में तो नमाज पढ़ना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो कीड़े थे वो मरते थे झुकने से। संत हृदय नवनीत समाना, उनके प्रति भी रहम दिल। ऐसे भी संसार में लोग हुए हैं कीड़े, उनके प्रति भी रहम दिल। वो क्या कर रहे हैं? वो खा रहे हैं, चूस रहे खून को, परंतु कंप्लेंट नहीं उस खुदा से, उस अल्लाह से। नो कंप्लेनिंग एटीट्यूड। बीमारी आ जाए तो वाह व्याधि वाह, बीमारी आ जाए तो सहन करना, बीमारी आ जाए तो दवाइयां दी जाएगी उसको भी ड्राई फ्रूट्स के रूप में स्वीकार करो। ये नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा। और यदि मन शक्तिशाली है तो संकल्प से भी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। परंतु यदि इतना अभी हम शक्तिशाली नहीं हुए हैं तो जो भी दवाइयां हैं उनको वाइब्रेशंस दो, दृष्टि दो और स्वीकार करो इस संकल्प के साथ कि ये दवाई लेते ही मेरी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। शक्तिशाली, उस दवाई लेने की उस क्रिया को, उस प्रक्रिया को भी योग बना देना है। वो जो दवाई है, इस एक दवाई में मैं अनंत प्यूरिटी की शक्तियां भर रहा हूं, दृष्टि इसमें डाल रहा हूं। अब ये दवाई जैसे ही मेरे शरीर में जाएगी, शक्तियां बन के सारी मेरी बीमारियों को दूर करेगी। एक एक दवाई के साथ एक एक शक्तिशाली संकल्प। और कलयुग है, कलयुग का अंत है, शरीर बीमार होगा, कुछ ना कुछ उसमें व्याधि आएगी। पहले तो प्रयत्न करना है कि उसे स्वस्थ रखा जाए, और उसके बाद भी आती है, आश्चर्य नहीं। ठीक है, आई तो ठीक है, सहन करना। तो पहला भाव है साक्षी का, अपनी देह के प्रति अमानत समझो। उसका है वो जाने, इतना उसको दे दिया है कि हमारा है ही नहीं। जो वैसा वो कराए, होई सोई जो राम रचि राखा, thy will shall be done, जो तेरी इच्छा। वो भगत थे, उन्हें संपूर्ण परमात्मा का परिचय नहीं था, परंतु विश्वास कैसा था उस पर दिखाया है। शायद आपने सुना होगा, एक राम का भगत था, जुलाया था, वो कपड़े सीता था, बेचता था। कोई ग्राहक उसके पास आता था तो पूछता था इसकी कीमत क्या है। वो कहता था ये कीमत इस कपड़े को मैंने 5 रुपए में खरीदा राम की इच्छा से, फिर उसको मैंने सिलाया राम की इच्छा से उसके 2 रुपए, और अभी आपको बेच रहा हूं उसका 1 एक्स्ट्रा। ऐसे ये 5 और 8 रुपए, 7-8 रुपए का ये कपड़ा है राम की इच्छा से। वो घर आया, खाना खाया, वरांडे पर बैठा था कि वहां से एक डाकुओं की टोली आई, और डाकू राजमहल में लूटने के लिए जा रहे थे। उनको लगा ये अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति है, इसको पकड़ के ले जाते, सारा जो सामान है इसके ऊपर लाद देंगे। तो उसको पकड़ के वो ले जाते, महल के अंदर प्रवेश करते हैं, बहुत सारा खजाना लूटते हैं, लूट कर बाहर आते, एक बोरी में भरते हैं और उसके पीठ पर डालते हैं। उतने में सिपाही आ जाते हैं और वो सारे के सारे डाकू भाग जाते हैं और इसको पकड़ लेते हैं जो कि राम का भगत है, और उसको पकड़कर सीधा कारागार में डाल देते हैं। सुबह सुबह राजा के दरबार में प्रस्तुत करते हैं। उतने तक उसके गांव के वो लोग भी आ जाते हैं जो तो जानते हैं ये तो इतना अच्छा भगत है, ये कैसे चोरी कर सकता है। राजा पूछता है बताओ तुम्हें अपनी सफाई में क्या क्या कहना है या जो जो हुआ। वो व्यक्ति अपना वर्णन चालू करता है, राम की इच्छा से मैं दुकान में बैठा था, फिर राम की इच्छा से मैंने दुकान बंद किया, फिर राम की इच्छा से मैं घर लौटा, और राम की इच्छा से फिर मैंने भोजन किया, और राम की इच्छा से मैं भोजन कर वरांडे में बैठा था, तब राम ही की इच्छा से वहां पे कुछ डाकुओं की टोली आ गई और राम की ही इच्छा से उन्होंने मुझे पकड़ लिया। और फिर राम की इच्छा से वो मुझे पकड़ कर ले गए, और राम की ही इच्छा थी कि जिन्होंने सारा खजाना लूटा और एक बोरी में भरा और मेरे सिर पर, मेरे पीठ पर रख दिया। परंतु उसी समय राम की इच्छा ऐसी हुई कि सिपाही आ गए, और राम की ही इच्छा से वो सारे डाकू भाग गए, और राम की ही इच्छा से मुझे कारावास में डाल दिया गया। और हे राजन, राम की इच्छा से मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो राजा सोचता है ये व्यक्ति कैसे चोर हो सकता है, तो राजा उसको छोड़ देते। तो वो व्यक्ति उसके गांव वाले जो आ रहे हैं उनके साथ घर जाता है और उनको कहता है, देखा राम की ही इच्छा से मुझे छोड़ दिया गया है। एक भगत है, परंतु कैसा समर्पण भाव है। बुरा भी हो रहा है, पीड़ा भी हो रही है, तो भी कोई सोई जो राम रचि राखा, नॉट मी बट यू, मैं नहीं तुम। क्या हमारा ऐसा समर्पण भाव है या कंप्लेंट से भरा है? ये स्थान ठीक नहीं, ये व्यक्ति ठीक नहीं, ये परिस्थिति ठीक नहीं, इसको बदल दो, उसको बदल दो, इसको बदल दो। बाबा ये हमने द्वापर में आपको आने को कहा था, ये ब्राह्मण परिवार कहां से आ गया? इसके लिए तो हमने बोला ही नहीं था, हमने क्या प्रार्थना की थी भक्ति में? तुम आ जाओ, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, परंतु ये तो पता ही नहीं था कि ब्राह्मण परिवार भी प्रकट हो जाएगा साथ साथ। परमात्मा अवतरण के साथ साथ ब्राह्मण परिवार अवतरण, और जो एक एक करके हिसाब लेते हैं रोज सुबह से रात तक, ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण परिवार ही एग्जामिनेशन हॉल है, और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर। दूसरा है मन के साक्षी, दूसरा मन के साक्षी। आगे आगे हो जाएंगे सभी। दूसरा है मन के साक्षी। मन किसका है? मन किसका है? यहां बाबा ने सात बातें बताई है, और आगे और आगे और आगे। एक सूफी संत कभी हुआ था, सूफी नहीं, यहूदी हेलिल। उससे किसी ने पूछा, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या है? तो उसने कहा, अध्यात्म अर्थात और आगे और आगे और आगे, रुकना नहीं है कहीं। थोड़े से अनुभव हो गए, बाबा की याद में आंखों से आंसू आ गए, यहां लाइट और वहां लाइट, और यहां ब्रह्मा बाबा वहां ब्रह्मा बाबा, कभी शिव बाबा दिख गया, कभी कोई दिख गया, और सोचा कि वाह मेरी तो बहुत उन्नति हो गई अध्यात्म में। आज तो योग में ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे शरीर में आने की इच्छा ही नहीं थी, पर रुक नहीं जाना, मील के पत्थर मात्र है, मंजिल आगे है और आगे। भाइयों की तरफ से और आगे और आगे और आगे और आगे। स्पिरिचुअलिटी मीन्स और आगे और आगे, रुकना नहीं है कहीं पर, कहीं पर। बहनों की, माताओं की तरफ से और आगे, आगे आगे बढ़ते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाना, रुकना नहीं कहीं पर। कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। रुकना नहीं है, जिसको रुकना है वो रुक जाए, परंतु हमें तो आगे बढ़ते ही जाना है, आगे बढ़ते ही जाना है। Arise, awake and stop not till the goal is achieved. उत्थिष्ट जागृत प्राप्य वराण्य बोधतः। कठोपनिषद कहता है उठो जागो और बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, और आगे और आगे और आगे। चेयर वाले और पीछे। मन के साक्षी में सात बातें कही है। पहला, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, दूसरा, मेरा योग नहीं लगता, मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं होती। तीसरा, चौथा मेरा धन, पांचवा मेरा पति, छठवा मेरी पत्नी और सातवा मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता, बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोलो। अरे कभी अपने गांव और अपने देश की बुद्धि का ताला खोलो ऐसा कहा था क्या? जहां मेरेपन का भाव है वहां हद है। ये मेरा 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 ये मेरा वो, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरे कपड़े, मेरा पेन, मेरी कॉपी, मेरा रुमाल, मेरा बेड, मेरी बेडशीट, मेरा बैग, मेरा चम्मच, मेरा पॉलीथीन बैग, एक चम्मच भी गुम हो गया तो हलचल, दूध की पन्नी कहाँ गई, कितने मेरे और कितने विस्तार है मेरा का, मेरी कंघी तुमने क्यों ली, मेरी साबुन, सब मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो, विस्तार को सार में समा देना, इस मैं को तू कर दे तेरा, तू जाने तेरा तुझको अर्पण, हमारा यहां पर कुछ भी नहीं है, इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है। यहां की चीजों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को अपना समझना मोह है, भ्रम है, मिथ्याचार है, अज्ञान है। यहां कोई किसी का नहीं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब करही प्रीति। स्वार्थी है सभी, स्वार्थ के कारण प्रीत कर रहे और हम सोच रहे ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो मेरा। किसी का इस संसार में हमारा कोई भी सगा नहीं है। एक परमात्मा के अतिरिक्त सब रिश्ते, सब नाते, सब संबंधी झूठ, दिखावा, आडंबर, हिपोक्रेसी। और इन्हीं को अपना समझना और इन्हीं में फंस जाना मूर्खता है। जो इस सत्य को जान ले वो मुक्त। इसलिए मेरा मन नहीं लगता, मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं, मैं उदास हूं, मैं दुखी हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, फ्रस्ट्रेटेड हूं, असफल हूं, अर्थात समर्पण भाव यहां नहीं है। उस मैं का समर्पण वास्तव में सबसे सूक्ष्म समर्पण है, वो भी उसका वो जाने, जो कुछ भी हो रहा है सब समर्पण। बहुत गहरी और बहुत ऊंची अवस्था है। उसको जहां बिठाना है बिठाए, उसको जहां जो कराना है कराए, हमारा कोई विरोध नहीं। वो चाहता है हम यहां रहे यहां, वो चाहता है हम वहां जाए वहां। समर्पण अर्थात जो पानी होता है और पानी के नीचे घास बड़ी वाली होती है, पानी इधर से आता है तो इधर झुकता है, इधर से आता है तो इधर झुकता है, इसी को समर्पण कहा जाता है। जहां अपनी व्यक्तिगत कोई इच्छाएं नहीं, इतना उस प्रभु के प्रति स्वयं को अर्पित कर दिया है, इतना स्वयं के मन के भी साक्षी हो गए कि मन में ऐसा हो रहा है, अब इसको तू ही संभाल। सूक्ष्म समर्पण है परंतु श्रेष्ठ है। ये जो विचार आ रहा है, ये जो आंदोलन हो रहा है विचारों का, उसको भी दे देना। और ये कार्य होगा अमृत वेला। कब होगा अमृत वेला? समर्पण भाव से बैठ जाना है। जहां जहां मैं है वहां वहां तू कर देना, जहां जहां मैं है वहां मैं आत्मा कर देना। तो इन दो चीजों से क्या हो जाओ? साक्षी। विधि बताई सहन करना। सत्युग के विषय में कुछ बातें बाबा ने बहुत अच्छी इस मुरली में कही है और तुलना की है इस संसार के साथ। पहला, वहां प्रकृति दासी होगी, परंतु उसके लिए यहां पर सहन करना पड़ेगा, उसके लिए यहां पर प्रकृति की सेवा करनी पड़ेगी, उसके लिए तभी प्रकृति सेवा हमारी करेगी, अर्थात प्रकृति को सकाश। 24 घंटे में कम से कम दो बार हरेक को प्रकृति को सकाश देना है, इस धरती माँ को, इस अवनी माँ को जिसने हमारी इतनी पालना की, ये सारे पांचों तत्व सतयुग से लेकर हमारी पालना करते आ रहे हैं और हमने इनके साथ क्या किया, अत्याचार, डिफॉरेस्टेशन, जंगल तोड़, क्या हाल किया है हमने, क्रुद्ध है प्रकृति हमसे, हमें इस प्रकृति को शांत करना है, शीतल करना है, इसके लिए फरिश्ता स्वरूप में जाना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षिति धरती जल अग्नि, पावक अग्नि और समीर इस हवा को सकाश, वायुमंडल को सकाश। वरदान में कहा है तपस्या कुंड बनना चाहिए सेवा केंद्र, तो पहली बात प्रकृति सतयुग में हमारी सेवा करेगी, एक दूसरा चैतन्य सेवाधारी होंगे वहां पर, वो कहेंगे हां जी हां मेरे मालिक, यहां पर आत्माओं की सेवा करनी। तीसरी बात पंखे, प्रकृति पंखा करेगी, परंतु यहां पर यदि पंखा ना हो उसको भी सहन करने की प्रैक्टिस चाहिए, गर्मी को सहन करने की प्रैक्टिस, ठंड को सहन करने की प्रैक्टिस, तो गर्मी को भी सहन करने की प्रैक्टिस, स्थित प्रज्ञ योगी अर्थात मान अपमान जय पराजय हानि लाभ सर्दी गर्मी सब में समान। ऐसा नहीं कि हमको तो यही चाहिए और हमको तो वही चाहिए, जो भी है पसीना आ रहा है तो उस पसीने को भी सहन करने की पावर। क्या करोगे पंखा नहीं चलेगा तो रात भर क्या करोगे, एक दिन लाइट ही चले जाए, रात भर बहुत गर्मी है और लाइट बंद, क्या करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस है, बैठकर गालियां दो सरकार, इलेक्ट्रिसिटी एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ढूंढो कुछ दूसरे साधन, तीसरा ऑप्शन क्या करेंगे, फैन ही नहीं चल रहा है, लाइट ही नहीं है, अंधेरा भी है और फैन भी बंद है, क्या करेंगे रात भर, कुमार क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, तपस्या, तपस्या करेंगे कुमार, और कुमारिया लाइट नहीं है फैन नहीं है, क्या करेंगे, चादर ओढ़ के सो जाएंगे, नींद आ जाएगी। शरीर को जितनी सुख सुविधाएं दो उतनी उसकी वो आदि हो जाता है, बीच में कुछ नहीं रहेगा, अभी जो कुछ है कुछ नहीं रहेगा, कुछ है कि आदत बहुत है, कुछ नहीं कि आदत कम है, वो भी आदत डालनी चाहिए, कुछ नहीं है पसीना आने दो, मर नहीं जाएंगे पसीना आने से, योगी अर्थात प्रकृति जीत, योगी अर्थात कर्मेंद्रिय चीत, योगी अर्थात जिसने इंद्रियों को वश में किया है, योगी अर्थात रूप रस स्पर्श शब्द गंध से अप्रभावित, जो प्रभावित होता है वो योगी नहीं, जिसकी चित्त की दशा हिल जाती है वो योगी नहीं, प्रकृति को सहन करना पड़ेगा, उसके हर रूप को, उसकी बारिश को, ठंड को, धूप को। तो तीसरा पंखा, चौथा लाइट, यहां पर तुम्हारी लाइट एक रंग की है और खेल दिखाती है, और सतयुग में कौन सी लाइट होगी, नौ रंग की लाइट, हीरा एक ही हीरा प्रकाशित करेगा और अलग अलग रंग की लाइट होगी, और लास्ट में बताएं यहां पर ट्रेन में सफर करना पड़ता है, पसीना उधर क्या होगा, तुम्हारे घर के आगे पुष्पक विमान खड़ा रहेगा और छोटा बच्चा भी चला सकेगा और एक्सीडेंट भी नहीं होगा और ड्राइवर के लिए वेट भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो जहां पर भी गाड़ी लगाओ वो ड्राइवर कहीं चला जाता है और फिर उसको ढूंढना पड़ता है कहां गया, फोन लगाओ ड्राइवर कहां है। सतयुग में नो वेटिंग बिजनेस। तो ऐसी पांच चीजें सतयुग के विषय में बाबा ने कही, यहां पर तुमको सहन करना पड़ेगा। आत्मा मौज में है परंतु शरीर को सहन करना पड़ेगा, इसके लिए जब शरीर की व्याधि, शरीर की परेशानी, शरीर को दुख आ जाए तो कंप्लेन करते नहीं बैठना है, बाबा मेरी खांसी ठीक कर दो, मेरा कमर दर्द ठीक कर दो और मेरा घुटना ठीक कर दो। घुटना एक बार ठीक हो जाए तो देखना ऐसा योग करूंगी परमधाम हिल जाएगा। खाली ये घुटने का कुछ करो बस, बिना ऑपरेशन के अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। ईश्वरीय जादू के प्रालब्ध की नगरी। क्या कहा? ईश्वरीय जादू के प्रालब्ध की नगरी है वो। विश्वकर्मा तो खड़ा है, अभी अभी बना देगा। विश्वकर्मा खड़ा है, महल और विमान तैयार हो जाएंगे, तुम तैयार हो। वो संपन्न नगरी है, तुम पहले संपन्न बनो उस नगरी में जाने के लिए। नॉट एवरी वन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। बाइबल में कहा है हरेक नहीं जो आकर केवल कहता है हे प्रभु हे प्रभु, हे प्रभु हे प्रभु कहने वाले नहीं। नॉट एवरी वन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर, जो मेरे पिता की श्रीमत है, जो मेरे पिता कह रहे हैं वो जो करेगा वही स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। यदि उस नगरी में जाना है तो यहां वनवाह में रहना होगा, यहां तपस्वी तपस्या करना होगा, यहां तापसी जीवन हो। यहां यदि कोई भोग विलास में डूबा हुआ है, कल की मुरली थी ना, जो साहूकार है वो गरीब होंगे, जो गरीब है वो साहूकार बनेंगे। एंड ही दैट इज द लास्ट शैल बी द फर्स्ट एंड ही हु इज द फर्स्ट हियर शैल बी द लास्ट। बाइबल में लिखा है एक जगह, जो यहां फर्स्ट है वो वहां लास्ट होगा, यहां जो यहां लास्ट है वो वहां फर्स्ट होगा। रहस्यमयी वाक्य है जीसस क्राइस्ट के, समझ नहीं आए कईयों को, जो यहां फर्स्ट है वो वहां लास्ट और यहां जो लास्ट है वो वहां फर्स्ट। यहां जो आगे आगे करता है और यहां जो दिखावा करता है, मैं ये हूं मैं त्या हूं ऐसा हूं वैसा हूं, वो वहां सबसे पीछे होगा। और जो यहां अत्यंत नम्र है वो वहां सबसे आगे होगा, जो सबसे गरीब है यहां पर वो वहां साहूकार होगा। कुमारियों से मुलाकात। कुमारियां बताएगी क्या कहा बाबा ने आपसे। कुमारियों के लिए बहुत सारी बातें कही है। कुमारी अर्थात सबसे पहले तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं बनना है, राइट हैंड अर्थात हैंड के दो अर्थ है, एक तो ये राइट हैंड और दूसरा सहयोगी, भगवान के कार्य में सहयोगी, हर संकल्प में सेवा समाई हो, यदि विरोध भी हो तो ये सोचते रहना कि कैसे मैं प्रभु के कार्य में सेवा करूं। कुमारी अर्थात किसी भी आकर्षण में न आने वाली, कुमारी अर्थात किसी से भी प्रभावित न होने वाली, कुमारी अर्थात पाउडर और क्रीम का क्या साफ। पवित्रता ही आत्मा का श्रृंगार है, उस श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। वो श्रृंगार कौन करते हैं, श्रृंगार कौन करता है वास्तव में, सुंदर बनने के लिए, अर्थात सुंदर जो नहीं है, अर्थात जो कुरूप है, अर्थात जो जितना अधिक कुरूप वो उतना अधिक श्रृंगार करेगा। यदि हम भी वो श्रृंगार कर रहे हैं अर्थात हम भी कौन है, क्रीम पाउडर डाई किस लिए लगाते हैं, डाई किस लिए लगाते हैं? दाएं किस लिए लगाते हैं? सुंदर दिखने के लिए, बालों को। हमारा सौंदर्य बाह्य नहीं, आंतरिक है। ब्यूटी इज बट स्किन डिप, वो जो ब्यूटी है केवल चमड़ी तक है, चमड़ी उधेड़ दो, कहां है इसमें सौंदर्य? क्या इस देह में सौंदर्य है? बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन, मलमूत्र से भरा यह देह, इसमें सौंदर्य है? सौंदर्य इसमें नहीं, सौंदर्य यहां है। सौंदर्य पवित्रता में है, सौंदर्य सादगी में है। ये बाह्य श्रृंगार हमारा सौंदर्य नहीं। कुमारी अर्थात जिसकी आंख किसी में ना डूबे और ना किसी और की आंख उसमें डूबे, अगर किसी और की आंख हम पे डूबती है तो वो हमारी ही कमजोरी है, बोला है बाबा ने आज। शास्त्रों में दिखाया है, किसका उदाहरण कहां दिखाया है पता नहीं, भैंस का उदाहरण, परंतु मुरलियों में आता है कि देवी ने देखा और वो भैंस बन गया, भैंस बुद्धि। हमारी पवित्रता इतनी श्रेष्ठ हो कि हमें देखकर किसी की दृष्टि वृत्ति खराब ना हो। यदि ऐसा हो रहा है तो सूक्ष्म में हमारे संकल्प कारण हो सकते हैं। हम ही चाहते हैं कि कोई देखे। संकल्प संकल्प को खींचते हैं। शायद ऐसा कुछ पहना है भड़काऊ, शायद ऐसा कोई श्रृंगार है जिसने उसको खींचा। ये एक साकार मुरली है, बहुत दिनों से आई नहीं है, पर शायद पांच वर्ष में एक ही वो मुरली है जिसमें बाबा ने पारसी स्त्रियों को याद किया है। बाबा ने कहा है वो पारसी स्त्रियां चेहरे पर काला लगा लेती है ताकि कोई लट्टू ना हो जाए, स्वयं को श्रेष्ठ स्वमान और श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित रखना है, स्वयं को देवी रूप में स्थित रखना है, मां के रूप में, जगत माता के रूप में। अभी अभी एक दो संडे पहले अव्यक्त वाणी थी, कुमारियों से मुलाकात। कुमारी अर्थात अपने आप को कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां नहीं समझो, शिव शक्ति समझो। वाह मैं श्रेष्ठ आत्मा, वाह मैं पूज्य आत्मा, आज कहा ना, ऊंचे जितने हमारे समान होंगे वही वाइब्रेशंस दूसरों तक जाएंगे। यदि वाइब्रेशंस, यदि संकल्पों में ही आकर्षण है, हम ही चाहते हैं कि कोई समीप आए तो वो आएगा जरूर, और फिर हम टकराएंगे और फिर हम सोचेंगे ये क्यों करता है ऐसा, शायद हमारी कोई सूक्ष्म कमजोरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम काम कर रहा है। इसलिए स्वयं को सिंपल कर देना है, बाह्य दिखावा, बाह्य सौंदर्य, सौंदर्य के प्रसाधन हमारे लिए नहीं है। कुमारी अर्थात अंगत, क्या कहा, अंगत, अच्छा लड़ोल, अंगर मुहाफिक। कुमारी अर्थात ना वो व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो ना वस्तु की तरफ आकर्षित हो। कुमारी अर्थात माया को परखने वाली, नहीं तो वही गति हमारी भी होगी जो सीता की हुई थी। सीता की वो सारी अवस्थाएं, सात, सबसे पहले आकर्षण हुआ सीता को, किसका आकर्षण हुआ, मृग का आकर्षण। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये सेवाधारी बहुत अच्छा है, अच्छा है, पर अच्छा बनाया किसने? ये भूल गया, ये संबंध बहुत अच्छा है, ये सेवा बहुत अच्छी है, ये वस्तु बहुत अच्छी है, ये मेकअप का सामान बहुत अच्छा है, ये ड्रेस बहुत अच्छी है। सीता को क्या हुआ पहले? आकर्षण, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इच्छा, मुझे चाहिए, कैसे भी करके ये ड्रेस मुझे चाहिए। तीसरा जिद, इच्छा ने जिद का रूप ले लिया। समझाया इच्छा के लेवल पर कि छोड़ो इसको, नहीं अब जिद धारण कर ली। थर्ड स्टेज। फोर्थ, धोखा। आवाज थी किसी और की, मारीच की, राक्षस की, रावण की, माया की, समझा किसकी है? राम की। राम पर निश्चय हिल गया, परख नहीं पाई, यही माया है, यही व्यक्ति जो कुछ कुछ लाकर दे रहा है, यही व्यक्ति को परख नहीं पा रहे कि इसके इंटेंशंस क्या है, किस मंशा से ये सब कुछ कर रहा है, और फंस गए संबंध में। और फिर चौथी स्टेज है धोखा, अगली स्टेज है अविश्वास। रावण लक्ष्मण को भेजा, जाओ जाकर देखो क्या हो गया है, किसकी रक्षा करने के लिए? राम की, राम की रक्षा, जो सारे विश्व की रक्षा कर रहा है। सकल जगत पालन कर जोई, ताके नाम राम अस होई। वह राम जो सकल विश्व का पालन कर रहा है, राम पर ही अविश्वास। शिव बाबा तो कुछ करते नहीं, अभी और देखते हैं कोई मिलता है क्या, साधु वगैरह। बहुत बोला बाबा को, बाबा तो नौकरी लगाता ही नहीं। उस महात्मा के पास गए तो तुरंत लगा दी, मैं तुम्हारी खांसी ठीक करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे बिजनेस लॉस ठीक करने नहीं आया हूं, मुझे तुम्हारे इसकी खांसी से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं एक ही काम करने आया हूं, पतित से पावन, डोंट ब्रिंग एक्स्ट्रा अफेयर्स। बाबा के बाबा ने बोल दिया, मेरा काम एक ही है, बाकी चीजें मत लाओ। बाबा मैं क्या करूं, मेरा पति मुझे बहुत मारता है। बाप कहते हैं तुमने भी मारा होगा, अच्छा ही है तुमको मारता है, तुमने क्या कम मारा था? वो साक्षी है, इंटरफियर नहीं करता है कर्म में, कार्मिक फिलॉसफी में जरा भी इंटरफियर नहीं करता है। छठवा, रावण को नहीं परख पाई, क्योंकि रावण किसके वेश में आया था? साधु के। श्वेत वस्त्र है, बैच है, पता ही नहीं चला ये रावण है। वही ब्रह्मा भोजन हमारे ही बाजू में बैठ के खा रहा है, पर है हमारे लिए वही रावण जो श्रीमत से हमें भटका रहा है। इंटरनेशनल योग का समय है और हमें कह रहा है कि चलो थोड़ा मार्केट में घूम के आते हैं, यहां भट्टी चल रही है और हमें कह रहा है कि कुछ और करके आते हैं। वही रावण है जिसे हम पहचान नहीं पा रहे, कुमारी अर्थात जो रावण को परख ले, धोखा ना खाए। और लास्ट सातवां पॉइंट जिसके वजह से सीता शोक वाटिका में पहुंच गई, वो है लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। यहां तक भी ठीक था, अगर यहां तक भी ठीक था वो शोक वाटिका नहीं पहुंचती, परंतु लास्ट स्टेप जो ले ली, श्रीमत का उल्लंघन, कल की साकार मुरली, जो श्रीमत को नहीं चलते, श्रीमत पर त्राही त्राही करेंगे, फिर पश्चाताप, फिर दुख, फिर प्रायश्चित, फिर पीड़ा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, रिपेंटेंस, ऐसी कड़ी निगरानी स्वयं पर रखनी है। तो ये सारी बातें बाबा ने कुमारियों से कही। उसके बाद में जागरण के विषय में कहा, भक्ति में भी जागरण करते हैं, यहां पर भी जागरण, यहां डबल कमाई होती है। जागरण अर्थात संपूर्ण जागरण, जागरण अर्थात चेतना का जागरण, आत्म अभिमानी स्थिति, मूर्छित नहीं हो जाना है। कुमारियों के संबंध में और एक बात है, जो हमने कहानी शुरुआत में सुनाई थी, वह जो कन्या जिसके पास वह बौद्ध भिक्षु आता है, कितनी ज्ञानी होगी, कैसी उसकी स्थिति होगी, श्रेष्ठ शक्तिशाली, कि दूसरा पुरुष हमारी ओर आकर्षित हो रहा है परंतु उसको भी ठिकाने लगा दिया, उसको अपने अंदर फंसने नहीं दिया, उसको उसी के धर्म की याद दिला दी। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति अर्थात कुमारी, जागरण। जागरण के बाद कल्याण की बातें बाबा ने की कि कल्याण एक्सीडेंट है उसमें भी कल्याण है, नहीं है तो ढूंढो, है कल्याण समाया हुआ है। थॉमस एल्वा एडिसन, उसने जो कुछ रिसर्च लैब बनाई थी सारी की सारी जल गई। वो खड़ा हुआ देख रहा था कितनी करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी, रिसर्च सारा उसका, सारी लैब जल रही है और वो देख रहा है ऐसे। उसका बेटा भाग के आता है, पिताजी पिताजी ये क्या हो रहा है? वो कहता है कुछ नहीं, अपनी मां को बुला के लाओ, वो ऐसा दृश्य बाद में नहीं देखेगी। और वो लिखता है, एडिसन लिखता है, ऑल द मिस्टेक्स दैट वी हैव कमिटेड आर गेटिंग बर्नड अप, जो हमने गलतियां की वो गलतियां मर जल रही है। यह अनुभव उसके बेटे ने रीडर्स डाइजेस्ट के 1952 के एडिशन में लिखा। नुकसान में भी फायदा, हर बात में कल्याण, सूक्ष्म कल्याण है, हम देख नहीं पा रहे, हमारा ट्यूब्यूलर विजन है इसलिए नहीं देख पा रहे, जबरदस्त कल्याण है, क्योंकि वो हुआ है, अब उससे सीखो, कुछ तो उसमें समाया हुआ है। तो कल्याण की बात कही। फिर बाबा ने कहा, बाबा सबसे क्विक सेवाधारी है, दूसरे को किसी को बुलाओ, पहले बुलावा भेजोगे, फिर वो देखेगा, फिर तैयारी करेगा, फिर आएगा, इधर से किसी को मैसेज भेजा, अभी तक ऑफलाइन है, फिर ऑनलाइन आया, तब तक तो इंतजार कर रहे थे, आजा 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 आजा, तो अभी आया, आने के बाद भी नो रिप्लाई, मैसेज रेड बट नॉट रिप्लाइड, और दुख जानबूझ के कर रहा है। संसार के लोग और मददगार देरी से आते हैं, बाबा ने कहा बाबा सेकंड से भी कम टाइम लगाता है, क्विकेस्ट सेवाधारी, परंतु वो पुकार कैसी होनी चाहिए, दिल से, ऊपर ऊपर की नहीं, दिखावे वाली नहीं, सतही नहीं, सुपरफिशियल नहीं, आर्त पुकार, हृदय से उठने वाली पुकार, ऐसी पुकार कि उसको आना पड़ेगा, वो आएगा। यदि झूठ है पुकार में, यदि दंभ है, आडंबर है, ढोंग है, सूडो कॉल्स, वो नहीं सुनता। अव्यक्त महावाक्य है ये, दिल का सौदा है, मुख का नहीं। फिर लास्ट में बाबा ने कहा विशेषता है, जो भी कार्य करो उसमें विशेषता समाई हुई हो, हर कार्य विशेष हो, विशेषता ही न्यारा और प्यारा बनाती है। तो इतनी पूरी ये आज की अव्यक्त वाणी है, इसमें से हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, वो लिख लो, जिस पर एकांत में चुपचाप मौन में चिंतन करना है। पहला प्रश्न है, सहनशील कैसे बने, 10 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला प्रश्न है, सहनशील कैसे बने, 10 पॉइंट्स। दूसरा प्रश्न, जब शरीर की बीमारी आ जाए तब क्या करें, 5 पॉइंट्स। अचानक डायग्नोसिस हुआ, किडनी फेल हो गई, डायलिसिस चालू करना है, अचानक पता चला कैंसर, अचानक पता चला टीबी है, अचानक पता चला कैंसर है पर सब जगह फैल चुका है, अचानक एक दिन एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर, अचानक ऐसा डायग्नोसिस होगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिसीज, करोड़ों में किसी एक को होता है, वो हमको हो गया, कोई इलाज नहीं है। अचानक बीमारी आने पर क्या करें? 5 पॉइंट्स। तीसरा प्रश्न, बाप क्विक सेवाधारी है, कैसे? चौथा प्रश्न, अपने जीवन में साक्षी भाव को कैसे लाए? अपने जीवन में साक्षी भाव को कैसे लाए? लास्ट पांचवा प्रश्न, हर बात में कल्याण को कैसे ढूंढे? ये 5 प्रश्न है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास, एक 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास चालू होगी। बीच में हम थोड़ी सी एक्टिविटी भी करेंगे, ऐसे कैसे बच्चों को साक्षी भाव में रहने वाली आत्माओं को, पूरी मुरली रिवाइज करनी है, ऐसे आप बताते जाओ, ऐसे ऐसे कैसे, वो हम पूछ रहे हैं, ऐसे याद के याद में किए हुए कर्मों द्वारा यादगार बनाने वाली आत्माओं को, ऐसी शुभ भावना से संपन्न शुभ भावना धारी आत्माओं को, ऐसे एवर रेडी आत्माओं को, ऐसे बोलते जाओ, क्या क्या सुना अभी तक, सहनशील आत्माओं को, ऐसे साक्षी दृष्टा आत्माओं को, ऐसे मेरा सो तेरा करने वाली आत्माओं को, ऐसे समर्पण करने वाली आत्माओं को, कुमारियों से क्या क्या कहा, ऐसी राइट हैंड आत्माओं को, ऐसी पूजनीय आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, महान आत्माओं को, ऐसी परखने माया को तुरंत परखने वाली आत्माओं को, ऐसे किसी में प्रभाव में न आने वाली आत्माओं को, आकर्षित न होने वाली आत्माओं को, किसी में उनकी आंख न डूबने वाली ऐसी आत्माओं को, ऐसे हर कार्य में विशिष्टता लाने वाली आत्माओं को, ऐसे निरंतर जागरण की स्थिति में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे हर संकल्प में सेवा भाव धारण करने वाली आत्माओं को, ऐसे गुणों का श्रृंगार करने वाली आत्माओं को, साफ क्रीम और पाउडर को साफ समझने वाली आत्माओं को, अच्छा सोमन है नहीं क्रीम और पाउडर को साफ समझने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति। तो अभी हम ब्रेक लेंगे।